आज सुबह हम लोगों ने सुना था भगवद गीता का वो पावन श्लोक। भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिसके पापों का अंत होता है वे दृढ़व्रता होते हैं, जिनका मोह नाश होता है द्वंद्व दूर हो जाता है। जिनके पापों का अंत हो गया है, मोह का नाश हो गया है, द्वंद्व दूर हो गए, ऐसे लोग भगवान का भजन दृढ़ता से करते हैं। जिनके जीवन में द्वंद्व हैं वे भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन थोड़ा भगवान का भजन किया, थोड़ा संसार का किया, थोड़ा अच्छा किया, थोड़ा बुरा किया, थोड़ा शुभ देखा शुभ बोला, थोड़ा अशुभ देखा अशुभ बोला, ऐसे गाड़ी चलती है। जिनके पाप जोरदार हैं वे ईश्वर के रास्ते नहीं चलते हैं, वो समय को बर्बाद करते हैं ताश में, रम्मी में, बीड़ियों में, सिगरेटों में और दारू में, जुआ में, झगड़े में, चुगलखोरी में, लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे के घरों के इधर की उधर बात, उसमें समय जाया करते हैं। समय को नाश कर देते हैं। अपने घर में काम नहीं है तो दूसरे के घर में जाके भी माया गप सप लगा देती है। तो जिनके द्वंद्व और मोह दूर हो गए हैं, जिनके पापों का अंत हो गया है, वे भगवान का भजन करते हैं दृढ़ता से। जो भगवान का भजन करने की शुरुआत करो, धीरे धीरे दृढ़ता आ जाएगी। यथा दानसि समिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे लकड़ी के ढेर को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही जीवन में ज्ञान की निगाह आ जाए, ज्ञान की अग्नि आ जाए तो हमारे पापों को जलाकर भस्म कर देती है। लकड़ी आड़ी टेढ़ी होती है, जब तक उसको अग्नि ने स्वाहा नहीं किया तब तक उसके रूप और आकृति होती है। अग्नि उसे स्वाहा कर देती है तो फिर पता नहीं चलता कि कौन सी लकड़ी टेढ़ी थी और कौन सी आड़ी थी, कौन सी बाबुल की थी और कौन सी मऊड़े की थी, और कौन सी खैर की थी, कौन सी साग की थी। लकड़ियों को आग छू जाए बस। ऐसे ही हमारे अंतःकरण को ब्रह्मा अग्नि पवित्र कर डाले तो हमारे पाप कौन से थे उसका फिर पता नहीं चलता है। पापों के कई प्रकार होते हैं। कई छोटे पाप होते हैं, 100 छोटे छोटे पाप मिलकर एक महापाप बनता है, 100 छोटे छोटे पुण्य मिलकर महापुण्य बनते हैं। कई किस्म के पाप होते हैं और वे पाप तब तक होते रहते हैं जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हो। भगवान के चरणों में प्रीति होती है तो पुण्य हो ही जाता है, लेकिन कभी गलती भी हो जाती है, वही गलती भगवान सुधार लेते हैं। पाप क्यों होते हैं? पाप होते हैं बेईमानी से। दूसरे का माल अपना मानो तो पाप होता है। दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बोलो तो जूते खाने पड़ते हैं। ऐसे लक्ष्मी भगवान की है और बोलता है कि धन हमारा है, पृथ्वी भगवान की है बोलते हैं ये खेत हमारा है, जल भगवान का है, तेज भगवान का है, वायु भगवान का है, आकाश भगवान का है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी हुई जो चीजें हैं वो भी भगवान की है। हम बेईमानी करते हैं, पाप के भागी बनते हैं, हम बोलते हैं हमारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह में अर मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये तू है और तेरा है, ये माया है। ये माया जीव को धोखे में डालती है, जीव से अनधिकार चेष्टा और अनधिकार आकांक्षा करवाती, और ये जीव बेचारा द्वंद मोह से फंस जाता है। जिनको सत्संग मिलता है वे द्वंद और मोह से पार हो जाते हैं। ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान को दृढ़ता से भजने का एक और तरीका हम समझ लें। ये बिल्कुल सच्ची पक्की बात है। इसमें पठित व्यक्ति भी फायदा उठा सकता है, अनपठित भी, देहाती भी और शहर का व्यक्ति भी, बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग भी फायदा उठा सकते हैं और छोटी उम्र के युवान भी फायदा उठा सकते हैं। बात बड़ी सादी सरल है लेकिन लाभ इसका अद्भुत है। योगियों को योग करने से जो हासिल होती है शक्ति सिद्धि, तपस्वियों के तप फलने से जो सिद्धि मिलती है, जपियों का जप सिद्ध होने से जो शक्ति मिलती है, ध्यानियों का ध्यान लगने से जो शांति और सुख मिलता है, निश्चिंतता मिलती है, वो निश्चिंतता आपको घर बैठे मिल सकती है। छोटी बात है, आप ध्यान से सुनना, खूब कीमती बात है। इस बात को व्यवहारिक ढंग से मैं पेश कर रहा हूं लेकिन आपको परमार्थिक के परम लाभ से पूर्ण कर देने वाली ये बात है कि आप जो कुछ करो उसमें कर्तृत्व भाव को मिटाओ। हकीकत में करने कराने वाली कोई महान शक्ति है, जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली कोई महान शक्ति है। हमारा तन मन बुद्धि निमित्त मात्र बनते हैं। जैसे विद्युत महान शक्ति है, पंखा, माइक, फ्रिज, लाइट, सगड़ी और साधन निमित्त मात्र है, ऐसे ही भिन्न भिन्न आकृतियां निमित्त मात्र दिखती है। करने कराने वाली कोई अद्भुत ईश्वर की शक्ति है, श्री राम। जब ईश्वर की शक्ति का आदमी परिचय नहीं पाता है तो अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को भोगता मान लेता है, अपने को सुखी मान लेता है, अपने को दुखी मान लेता है। जब तुम्हारे मानने से तुम दुख का एहसास करते हो, तुम्हारे मानने से तुम सुख का एहसास करते हो, तुम्हारे मानने से तुम हिंदुत्व का एहसास करते हो, तुम्हारे मानने से तुम ठाकुर जाति का एहसास करते हो, ये भी तो मान मान के करते हो ना लाला। अकबर के दरबार में कोई संत गए और संत ने कहा कुछ सत्संग की बात। इतने में अकबर ने कहा कि गुरु महाराज, हे फकीर बाबा, मैं अपने अनुभव की बात करता हूं। फकीर बाबा ने कहा, पागल, तेरा अनुभव क्या है? तू अपने कोई नहीं जानता तो तेरा अनुभव क्या हो सकता है? राजा ने कहा, नहीं महाराज, मेरा अनुभव है, तूने सुन सुन के अपने को कुछ माना है और जैसे वातावरण में पैदा हुआ ऐसी तेरी बुद्धि बनी है और ऐसा तेरा अनुभव होगा। तू अपने को तो जानता नहीं, अपने आत्मा में तो गहरा उतरा नहीं, तो तेरे अनुभव की क्या कीमत? सुन सुन के तू मानता। एक काम कर कि किसी नवजात बालक को तू नजर कैद करवा दे और उसके कान में कोई कचरा मत भरो, फिर वो अपने को क्या मानता है फिर देखो। अकबर ने प्रयोग किया, कहीं से नवजात शिशु बालक ले आए, जेल में रखा, उसके रहने की, दूध आदि की सुव्यवस्था रखी, लेकिन उसके कान में कोई शब्द न पड़े। बच्चा बड़ा हुआ, एक साल का, उसको पता नहीं मैं मेरा नाम क्या है, नाम उसमें थोपा हुआ था, थोपा नहीं। दो साल का हुआ, चार साल का हुआ, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं हिंदू हूं कि पारसी हूं कि ईसाई हूं कि मुसलमान हूं, क्योंकि उसके कान में डाला ही नहीं क्या। उसको ये भी पता नहीं कि मैं लड़का हूं, लड़का भी तू छोरा है, ये भी कान में डालना पड़ता है, तू छोरी है, तू छोरा है, ये कुछ उसके कान में शब्द नहीं पड़े। लड़का बड़ा होता गया, अकबर वजीरों से पूछे कि लड़का क्या बोलता है? ऐसा तो नहीं बोलता कि मुझे जेल में से निकालो, नजर कैद क्यों रखा है? उन्होंने कहा, हजूर, उनको पता ही नहीं जेल क्या होता है, रेल क्या होती है, भीतर क्या होता है, बाहर क्या होता है, ये उसको कान में अभी कचरा पड़ा ही नहीं है। वो बच्चा 7 साल का हो गया, उसके कान में जातीयता, संप्रदायता, मेरा तेरा कुछ नहीं पड़ा। बच्चा 9 साल का हो गया, अकबर चक्कर मारने लगा, शायद मुझे देखकर बच्चा कुछ बोले कि जहां पना राजा धीराज, अंदाता महाराज, घणी खम्मा, मुझे जेल में से निकालो। अकबर चक्कर मारने लगा, लेकिन उस बच्चे की दुनिया में तो अकबर जैसी चिड़िया संसार में पैदा हुई कि नहीं कोई पता नहीं। लड़का 11 साल का हुआ, फिर भी उसको ये पता नहीं कि मैं अमुक जाति का हूं, ये अमुक मेरा है, ये अमुक पराया है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मिलकत है, ये मेरा भतीजा है, ये कुछ नहीं। ये उसमें पहले बचपन में गलती दूसरे भरते हैं, बाद में वो दूसरों पे गलती भरता है। जयराम जी की, बचपन में पहले भूल भरी जाती है बच्चों में, और बाद में वही बच्चे दूसरों में भूल भरते हैं। ऐसे ही भूल से संसार चला रहा है, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। भूल पक्की होती गई, इसीलिए जीवात्मा परमात्मा से अलग होता सा भासता है, फिर भी अलग नहीं हो सकता। ये भूल पक्की हो गई, उसीलिए लगता है कि परमात्मा पाना जरा कठिन है, साक्षात्कार करना कठिन है, ईश्वर दूर है, ये भूल पक्की हो गई। जैसे शराब का नशा पक्का हो जाता है, कि शराब का नशा अति हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि घर दूर है। एक शराबी है, वो अपने घर में दारू पीता, दारू के नशे में है, चकनाचूर हो गया, फिर चिल्लाता है मेरे को अपने घर ले चलो, मेरे बेटे कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। अब उसको लोग समझा रहे हैं कि ये तेरे बेटे ये तेरी पत्नी है, अरे समझाने वाले भी शराबी हैं। उसके शराब का नशा उतारो, फिर कहने की जरूरत नहीं कि तेरे बेटे हैं और ये तेरी पत्नी है। शराब का नशा उतरते ही उसको ऐसा नहीं कि एक घर में से दूसरे घर में ले जाना है, या दूसरी पत्नी पकड़ाना है, या बच्चे पकड़ाना है, केवल उसका नशा उतार दो बस। ऐसे ही जीव को नशा चढ़ा है, पीत्वा मोहमय मदिरा संसार भूत्व उन्मत। मोह मदिरा पीकर हम उन्मत हो गए हैं। भगवान बोलते ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह। उनका द्वंद्व और मोह चला गया, जिन्होंने सत्संग सुनकर पापों का अंत करके द्वंद्वों को हटाकर भगवान की शरण ली है, मोह चला गया है, उनको भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष भासता है। मोह कैसे बढ़ता है? सुन सुन के बढ़ता है, देख देख के बढ़ता है, सोच सोच के बढ़ता है। श्री राम, सोच सोच के बढ़ता है, सुन सुन के बढ़ता है, देख देख के बढ़ता है मोह। तो अब महाराज क्या करे, देखे नहीं क्या? भैया देखो तो सही, सुनो तो सही, समझो तो सही, लेकिन जिससे देखा जाता है, जिससे सुना जाता है, जिससे समझा जाता है, सब उसी का है। ये भाव आप रख दो, आपको मोह बांधेगा नहीं। श्री राम, बात बड़ी सरल ढंग से कह रहा हूं, लेकिन बहुत ऊंची बात है। आप कृपा करके इसको आदर से सुनना और जीवन में उतारोगे, आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आपकी मीठी नजर जिन पर पड़ेगी ना, वो भी मस्ती में आ जाएगी। जय राम जी की, ऐसी बात है। आप बोलते हैं कि ये बेटा हमारा है, मानता नहीं, लुच्चा है, लुफंगा है, कहना नहीं मानता। आप मोह से भरे हैं, इसलिए बेटा के पीछे पड़े हैं, और जितना आप बेटे के पीछे पड़ते हैं, उतना ठीक से नहीं होगा काम। आप तुलसी का दल उठाकर बेटे के सिर पे रख दो कि मेरा नहीं है, ठाकुर जी का है, भगवान का है। भगवान का बेटा समझ के फिर उसको खिलाओगे पिलाओगे, तो आपको मोह नहीं होगा, ममता नहीं होगी, आप भगवान के बेटे की सेवा कर रहे हैं, पुण्य हो जाएगा आपको, और बेटा सुधर जाएगा, बेटे का बाप भी सुधर जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है, आजमा के देखो। बेटी मेरी है, पांच बेटी है, चार बेटी है, इनकी मंगनी करनी, चिंता और मोह से आप अपनी शक्ति नाश कर रहे हैं और जगतनीयता का अपमान कर रहे हैं। जो इतनी सृष्टि बड़ी बनाया है और संचालित कर रहा है, तो तुम बीच में हस्तक्षेप करके मेरा मेरा करके दुख क्यों मोल ले रहे हो? चिंता और मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको देत हूं क्या लागत है मोर। भगवान की चीज को भगवान की मानकर उनकी सेवा करो, तो आपका व्यवहार बंदगी हो जाएगा। भगवान की चीज में अपना मुंह की मोहर लगाकर फिर जो सेवा करते हो, सेवा नहीं होती, वो तो ममता हो जाती। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सब व्याधियों का मूल है। आप एक काम कर सको तो मैं बता दू, तुलसी के दल ले लो, बेटा के सिर पे रख दो, आज से बेटा मेरा नहीं है, ठाकुर जी का है। तंदुरुस्त है तो ठाकुर जी का है, बीमार है तो ठाकुर जी का है, जी रहा है तो ठाकुर जी का, मर गया तो ठाकुर जी का है। अच्छा तो तुम्हारे कहने से मर भी नहीं जाएगा। अच्छा मर भी गया तो ठाकुर जी का बेटा कभी मरता नहीं, वो यहां से हटकर और जगह जन्मता, मरता कहां है? तुम्हारी ममता मरती है, तुम्हारी ममता रोती है कि ठाकुर जी का बेटा थोड़े मरता है। एक जेब में से पैसे निकाले दूसरे जेब में रखे तो पैसे भाग गए क्या? ऐसे ही ईश्वर की सृष्टि में बेटा मरता नहीं है, ईश्वर की सृष्टि में कोई निर्धन नहीं होता। हमारी ममता निर्धनता धनता की जाल बुनकर परेशान होती। बेटी मेरी नहीं, बेटी ठाकुर जी की, घर मेरा नहीं ठाकुर जी का, धान ठाकुर जी का, और हकीकत में है ठाकुर जी का। सूरज तुमने तो नहीं बनाया, किसी ने बनाया हो तो बोलो कृपा करके। सूरज आपने नहीं बनाया है, चंद्रमा आपने नहीं बनाया है, बादल तुम बनाया है नहीं, बरसात तुम करते हो नहीं, तो बरसात ठाकुर जी की है। सूरज के किरण ठाकुर जी के हैं, चंद्रमा के किरण ठाकुर जी के हैं, उससे अन्न और वस्तु पैदा होती, तो वस्तु किसकी हुई? ठाकुर जी की हुई। वो वस्तु खाकर रक्त बनता है, रजवीर्य बनता है, उससे बालक पैदा हुआ, तो बालक किसका हुआ? ठाकुर जी का हुआ। तुम तो केवल मैनेजर हुए क्या? तुम तो केवल बालक ट्रस्टी हो गए, तो ठाकुर जी के बालक हो गए। अब ठाकुर जी के बालक ठाकुर जी का अन्न। अब मिट्टी किसने, तुमने बनाई है बताओ? नहीं, मिट्टी ठाकुर जी की है, प्रभु की है। मिट्टी प्रभु की है तो जल किसका है? जल प्रभु का है। जल प्रभु का है, मिट्टी प्रभु की है तो अग्नि किसकी है? प्रभु की है। तो ईंट बनी वो किसकी हुई? प्रभु की हुई। उस ईंट से घर बना तो घर किसका हुआ? सच बताओ, आप बेईमानी क्यों करो? घर ठाकुर जी का। आप ठाकुर जी के घर में रहो ना भैया, काहे को मेरे मेरे घर में मर रहा हूं अपने? कोई वृंदावन में रहे, कोई मथुरा में रहे, काशी में 5-10 दिन रहे, कहां गए थे? कि भगवान के धाम में रहे थे। द्वारका रहे थे कि भगवान के धाम में रहे थे। हरिद्वार रहे कि भगवान के धाम में रहे। तो हरिद्वार में जो सूरज चमकता है और जल भगवान का पहुंचता है, यह भी वही तो है कि? आप घर में मत रहिए, लद्दुमना में मत रहिए, ठाकुर जी के धाम में रहिए। केवल भाव बदल दोगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भाव से ही आदमी बंधता है, भाव से ही खुलता है, भाव से ही दुखी होता है, भाव से ही सुखी होता है, भाव से ही मुक्त होता है, भाव से ही चक्कर में आता है। और भाव बदलना तुम्हारे हाथ की बात है, दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। श्री राम। कल मैंने एक अर्ज किया था कि दो सन्यासी थे, एक रो रहा है, हाय रे हाय, ये हो गया वो हो गया, वो नले उड़ गए ये कर दिया, दूसरा के धन्यवाद से भरा जा रहा है। घटना तो वही की वही घटी, एक दुखी हो रहा है, एक परम सुखी हो रहा है, एक की तपस्या बढ़ रही है और दूसरे की साधना नाश हो रही है। और भाव करना आपके हाथ की बात है, ये भी तो भाव करते हो, मेरा 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 रोज सोचते हो तभी तो ममता बढ़ती है, रोज चिंता करते हो तब चिंता प्रगाढ़ हो जाती है। घर में कभी कोई विचार वैमनस्य होता है तो आप खुश हो जाओ, ये सेवा करने से तो आपका पुण्य बढ़ता है, वाहवाही होने से तो पुण्य खर्च होता है। आप घर की कुटुंब की सेवा करते हो और कुटुंबी या ननंद या सासू या भाभी या बड़ा भाई या छोटा भाई आपको बोलता है आप कुछ नहीं करते, आप ऐसे हैं वैसे हैं, आप सोचो कि वाह वाह भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। सेवा करने से तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ, ठाकुर जी के बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, और जो कुछ फटकार सह रहे हैं उससे तो मेरे पाप कट रहे हैं। जितना सुख में भगवान मिलते हैं उससे ज्यादा दुख में भगवान जल्दी मिलते हैं। सुखी आदमी तो वाहवाही में फंस जाता है, सुख में फंस जाता है, लेकिन विघ्न बाधा आ जाए उस समय अगर आप ठाकुर जी को धन्यवाद दो तो विघ्न बाधा आपको असर नहीं करेगा, आपको तो खुशी होगी। रबिया के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? मीरा के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? पहलाज के दुख के आगे तुम्हारा दुख क्या है? जब दुख आवे, विघ्न आवे, तो ये ऐसा है वो ऐसा है, नहीं, ठाकुर जी पर नजर डालो कि तू कितना दयालु है। अपमान करा के तू मेरा पुण्य बढ़ा रहा है, प्रभु मेरी ममता हटा रहा है। मेरा मन था कि ये मेरे हैं, अब सासू लड़ रही है ये घर मेरा नहीं है, बहू लड़ रही है ये मेरी ममता थी उसलिए बहू लड़ रही है, मेरी बहू है उसलिए लड़ रही है, ये मेरापन मेरे हृदय में है। जहां तुमने मेरापन किया वहां जरूर धोखा मिलता है। बच्चे मेरे हैं, पालू पोषू, बड़े हो जाएं और कमा के मुझे खिलाएंगे, इस बहाने जो बच्चों का लालन पालन हम करते हैं तो वे बच्चे बड़े होकर दो हाथ पैर वाले होते ना, फिर शादी की तो चार हाथ पैर हो गए,
तो फिर वो चार हाथ पैर वाले हो जाते, पशु वृत्ति से वो चले जाते और माँ बाप रोते रहते हैं। ममता से नहीं, बड़े होंगे, अरे एक हार्ड मास के बच्चे पर तू आधार रखता और जगत नियता का आधार छोड़ देता कि छोरा मेरे को सुखी करेगा, बुढ़ापे में छोरा मेरी सेवा करेगा। अरे जिस भगवान ने गर्भ में तेरी रक्षा की, जिस भगवान ने गोद में तू आया और तेरे लिए दूध बना दिया, न ज्यादा मीठा न ज्यादा फीका, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, और जब चाहिए तब फ्रेश, पवित्र का पवित्र, वो भगवान का भरोसा छोड़ के तू अपने एक छोरे पर, दो छोरों पर, जमाई पर भरोसा करे? नहीं नहीं, तू भरोसा परमात्मा पे कर और तू काम संसार में कर। संसार में अपना काम मत कर, अपनी वासना से मत कर। ठाकुर जी का है तू ट्रस्टी बनकर कर, तेरे कर्म का बंधन कट जाएगा और तेरा दृढ़ व्रत हो जाएगा। तू जब भोजन बनाएगी तो ठाकुर जी के लिए बनाएगी, क्योंकि बच्चे ठाकुर जी के, पति में मेरे ठाकुर जी हैं। वो तेरा भोजन बनाना नहीं हो जाएगा माता, वो तो तेरी सेवा हो जाएगी। जो काम करते हो बराबर प्यार से करो, सुचारू रूप से करो। गाय दोते हो तो बराबर प्यार से दो, भैंस दोते हो तो बराबर ठीक ढंग से दो, खेती करते तो ठीक ढंग से करो, लेकिन अपना समझ के नहीं, ठाकुर जी का दास समझ के करो। मेरा नहीं है, और जो खेत तुम्हारा अभी तुमको दिखता है क्या तुम्हारा है? तुम्हारा है तो साथ में ले जाओ। उस खेत पर हजारों लोग आए और हमारा नंबर है, ये हमारा खेत है, हमारा खेत है, कर करके सब चले गए। ऐसे आप भी तो चले जाओगे? ये जमीन में मैदान में बैठे हैं, क्या अपना है? बोले स्कूल का है। क्या स्कूल का? ये 100 साल पहले इसी स्कूल का था क्या? 200 साल के बाद इसी स्कूल का रहेगा क्या? बदलते जाएंगे। अभी जो कार्यकर्ता है, जो अभी साहब है, जो बोलते हमारा है, वो रहेंगे क्या? भूमि तो यही कि यही हमारा 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 करके हम लोग तो रवाना होने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी, आप बताओ जरा, हाथ रख के दिखाओ कि चीज हमारी है। तुम्हारी है तो उसको तुम्हारे सदा साथ रखो, नहीं रहेगी। अरे शरीर भी तुम्हारा नहीं है भैया, शरीर भी तो ठाकुर जी का है। शरीर तुमने बनाया, अपनी अपनी मर्जी से जन्म लिया है, अपनी मर्जी से जन्म लिया है तो जवानी को रोक के रखो, अपनी मर्जी से लिया है तो बुढ़ापे को मत आने दो, बीमारी को मत आने दो, रोग को मत आने दो। रोग आता है तुम्हारी मर्जी से आता है, बीमारी तुम्हारी मर्जी से आती, मौत तुम्हारी मर्जी से आती, ये सब ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है क्या? जब सब मौत तुम्हारे हाथ में नहीं, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, बुढ़ापा रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, तो खाम खा चिंता क्यों मोल लो? सब ठाकुर जी का है। आप काम करो सुचारू रूप से, लेकिन उसमें से कि सुख लूं या ममता बांधूं, ये मुसीबत पैदा मत करो। तो आपका अंदर का सुख प्रकट होने लगेगा, आपके मन में निश्चिंतता आने लगेगी और काम बढ़िया होने लगेगा। निश्चिंतता आएगी, काम बढ़िया होने लगेगा, घटिया भी हुआ तो दुख नहीं होगा और बढ़िया हुआ तो आसक्ति नहीं होगी। जय राम जी की। घटिया हुआ तो दुख ना हो और बढ़िया ना हो तो आसक्ति ना हो, तो आपके चित्त की शांति बढ़ जाएगी। शांति बढ़ जाएगी तो आपका सामर्थ्य बढ़ जाएगा, और सामर्थ्य बढ़ जाएगा तो सामर्थ्य का भी अपने मजा न लो पर हित में उपयोग करो, तो परम समर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रागट्य होने लगेगा हृदय में। बिल्कुल आप अनुभव करके देखो, ये हम ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं आपको ठंडे पोर के गप्पे, बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है। मैं और मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। मैं और मेरा का जो वृत्ति है वही हमको पकड़ रखती है। अपने वालों के प्रति आदमी झुक जाता है, खोटा बोटा करता तो चला रहता है, और पराए वालों के प्रति ऐसा हो जाता है, ये ममता कराती। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तांते उपजे पुनि भवशूला। ये मोह जो है ना, शरीर का मोह, कुटुंब का मोह, जाति का मोह, संप्रदाय का मोह, मेरे तेरे का मोह, ये सारा जो मोह है वो आदमी को दुखी कर देता है। रात को आप सो जाते हैं, कोई मोह ममता नहीं, कितना मजा रहता है। सुबह उठते हैं, पहले क्षण कितनी शांति रहती है। जब धीरे धीरे आता है कि ये भैंस दोना है, ये मेरा है, ये मेरा है, वह है, मुसीबत हो जाती है। आपके चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, उनका लालन पालन करो, लेकिन अपना मान कर मत करो, ठाकुर जी के मान कर। अथवा दूसरों के चार बच्चों का लालन पालन करो, दूसरों के चार बच्चों का लालन पालन करने से जो पुण्य होगा वही पुण्य अपने बच्चों को ठाकुर जी का मानो तो वही का वही पुण्य होगा, लेकिन मान्यता ईमानदारी की होनी चाहिए। दुनिया में कई कई आदमियों की लड़कियां होगी, उसकी आपको चिंता है क्या? कई आदमी अस्पताल में बीमार पड़े, उनके आपको चिंता है क्या? कहीं ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं आक्रांत कर रहे हैं, उनकी आपको परवाह है क्या, चिंता है क्या? क्योंकि अपने नहीं, लाखों लाखों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं भारत में, लेकिन जिनसे ममता नहीं उनका दुख आपको सताता है क्या? जिनसे ममता नहीं है उनका सुख आपको अहंकार दिलाता है क्या? नहीं। तो करोड़ों करोड़ लोग हैं, उनसे ममता नहीं तो उनका दुख आपको दुखी नहीं करता, उनका सुख आपको अहंकार नहीं देता। आप निश्चिंत हैं कि नहीं है? जब करोड़ों से आप रहते हुए भारतवासी हैं, करोड़ों से रहते हुए भी आपकी ममता नहीं है तो उनका दुख सुख आपके अंतःकरण को डामाडोल नहीं करता, तो गिने गिनाए 5-25 आदमी में से ममता हटा दो और क्या है? फिर साक्षात्कार तो तुम्हारा अपना स्वभाव है क्या? साक्षात्कार कोई आकाश पाताल से भगवान थोड़े आ रहे हैं, भगवान तो छुपे हैं हृदय में। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ये माया है, धोखा है, जो है नहीं उसको सच्चा भासता, उसको सच्चा मानते, और जो सच्चा है उसको ढक दिया। जैसे तालाब काई से ढक गया, अब वो हरी हरी काई सच्ची लगती और पानी दिखता नहीं, काई भी तो पानी के सहारे खड़ी है। ऐसे मेरे मेरे की ममता भी वो ठाकुर जी के सहारे खड़ी है क्या? वो आत्मा के सहारे तो तुम बोल रहे हो क्या? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब मेरा जब आ जाए तो बोलना प्रभु तेरा है, ये छोरा मेरा है कि नहीं, ठाकुर जी का है। छोरा सुधर जाएगा, छोकरी का काम बन जाएगा, भाई का काम बन जाएगा, तो चलो ये ठाकुर जी का है, काम बन जाए। ऐसा नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, ईमानदारी से, गहराई से आप निश्चिंत हो जाओ, आपके कार्य होने लगेंगे। सच्चाई से आप निश्चिंत हो जाओ, आपका फिक्र दूर हो जाएगा, फिक्र फेंक कुएं में। एक था लालबू झक्कड़, खेत से लौट रहा था, जरा नेता था, थोड़ा चलता पुरजा नेता था, निगुरा नेता था, कथा वथा में नहीं गया होगा, ऐसा नेता था। रोजे के दिन चल रहे थे, किसी खेत में बड़ा विशाल कुआ था, जैसे आप लोग देखा, किसने खेत खुद, किसने कुआ खुदवाया, जरा देखें। नेता तो है, नेता, नेता की नजर तो चारों तरफ रहती है, जरा नजर डाली कुआ में तो पानी तो दिखा, लेकिन पानी में चांद कैसे अंदर आ गया यार? और रोजे के दिन है, तू अंदर क्यों खड़ा है? बाहर आ जा, बाहर निकल, आ जा तू, आ जा जल्दी, आ जा तू, रोज लोग रोजा खोलेंगे, ये हमारा काम है नेताओं का कि लोगों की सेवा करना है। बाहर आ जा तू, आ जा तो अंदर से प्रतिध्वनि हुआ, तू आ जा। अरे मैं क्यों आऊंगा? तो अंदर से प्रतिध्वनि हुआ, मैं क्यों आऊंगा? बोले बोले तेरे को मैं तो लेके ही जाऊंगा, तो अंदर से आवाज आया, ले जाऊंगा तेरे को। तू कैसे ले जाता है? वही ध्वनि आया कि तू कैसे ले जाता है? वकड़ा, देख मैं कैसे ले जाता हूं। उसने बोला देख मैं कैसे ले जाता हूं। लालबू झक्कड़ ने रस्सा लिया और फांसा बनाया और डाला कुएं में कि चांद को निकाल के रहूंगा, तेरे को लेके ही जाऊंगा, तो अंदर से आवाज आए तेरे को लेके जाऊंगा। डाला रस्सा यूं यूं घुमाया, चांद जहां दिख रहा था वहां पटका, थोड़ा घुमाने से कोई कुएं में कोई चट्टान का टुकड़ा पत्थर था, उसमें वो रस्सा फंस गया घोड़ा गांठ। अब तो महाराज पनघट पर जोर मार के उसने बल से जरा खींचा, 1, 2, 4, 10 बार, 25 बार खींचा, लेकिन यार कुछ भी हो फंसा तो है लेकिन बड़ा भारी है तू। अंदर से आवाज आया कि बड़ा भारी है तू, कि मैं तो भारी हूं लेकिन तू भी कम नहीं है। घसीटा घसीटा घसीटा, आंच के लगाते 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 महाराज रस्सा थोड़ा टूटता गया, उसको पता नहीं चला। हर ज्यादा जोर मारा, खुदा खैर करे, धड़ाकधुम रस्सा टूट गया, पीठ के बल से जा गिरा। जा गिरा तो मस्तक में थोड़ी चोट लगी, पीठ में लगी, 2-5 मिनट के लिए मूर्छित हो गया। फिर आंखें खुली तो देखता कि चांद आकाश में, बोलता है यार कुछ भी हो जाए, रस्सा टूटा लेकिन तेरे को तो चांद को आकाश में तो खड़ा कर दिया क्या यार, तेरे को वहां लाके तो खड़ा कर दिया क्या, मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं, लालबू झक्कड़ हूं मैं, जैसा तैसा आदमी, मैं बड़ा प्रसिद्ध नेता हूं। अरे भैया, होता प्रकृति में है, प्रकृति में यूं लीला हो रही है, और अहंकार बोलता कि मैंने लाके रख दिया, मैंने लाके कर दिया, ये बेटा मेरा है क्योंकि मैंने जन्म दिया है। ओहो, गुलाब का पौधा बोलता है गुलाब मेरा है क्योंकि मैंने पैदा किया है। तूने अगर पैदा किया, तू मोती का फूल पैदा करके देखा तब समझे कि तूने पैदा किया।
गाय कह दे कि बछड़ा मेरा है, ये गलत बात है। बछड़ा तेरा तब है कि जब तू पाड़ी पैदा करके दिखा दे।
लड़का तेरा तब है कि जब तू नान्यतर कोई अलग चीज पैदा करके दिखा दे। ये तो प्रकृति का ढांचा बना हुआ है, ऐसा हो रहा है रिदम से के जैसे शरीर के संचय हैं उसी प्रकार से हो रहा है कि ये बेटा मेरा है बेटी मेरी है। तो बेटा मेरा बेटी मेरी तो तू एक बछड़ा पैदा करके देखा तो हम कहें बछड़ा तेरा है, अब बेटा तेरा हुआ। ये तो मन की बेईमानी है जगत नियता का, है ठाकुर जी का, और बेईमानी करके बोलते हमारा बेईमान आदमी दुखी होता ही है और क्या करेगा। भजन का मतलब है बेईमानी मिटाना। जयराम जी की है भगवान का और हमारी ममता।
मरते समय क्यों दुखी होते। मैसाणा डिस्ट्रिक्ट में एक बूढ़ा मर रहा था, बेहोश हो गया। बूढ़ी चाची ने उसको जरा पैरों की मालिश बालिश की, जरा अजवाइन वजवाइन घिसा। डॉक्टर तो हाथ धो के बोले भाई अब तो एक आका जाएगा। अब आना के दिन पूरे हो गए, बेहोशी बेहोशी में अब इसके प्राण निकलने वाले। काकी होशियार थी, जरा मालिश वालिश किया और दान की थाली थाली निकालते आप लोगों में भी होता है क्या, दान करने की आखिरी थाली लाए, काका को बोला उठो जागो जागो है, थाली पे हाथ रखो। बोले मेरे लुगाई कहाँ है। वो बोलती ये खड़ी हूं के मणि मैं हूं। अच्छा तो मेरे लड़के कहाँ है। ये चार के चार खड़े हैं छे छे फूटिए के, और तीन बहुएं खड़ी है घूंघट तान के खींच के, वही एक लड़का कुंवारा है। बोले चार के चार बेटे इधर हैं बहुएं इधर हैं तो खेतर में वो धान का क्या होगा, वो खड़ा में जो माल पड़ा है और मूंगफली निकालनी है उसका क्या होगा। छोरे सब इधर हैं और बहुएं इधर हैं तो रसोई घर में देखो बिल्लार है, बिल्लार कहीं खत्म न कर दे दूध, रसोई घर में दूध बिगड़ न जाए और खेतर में माल खराब न हो जाए, उनका क्या होगा। अरे तू तेरा सोच तेरा क्या होगा रे, जिंदगी भर हाय हाय करो मरने के समय भी उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तू तेरा तो सोच यार। अरे गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने ए सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिसका था उसका माना नहीं उल्टी लगन लगी, जिसका नहीं है उसका माना। अरे गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने ऐ सजन क्या कहूं तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे या दफन तुझको। शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता ऐ कफन और वतन तुझको। ऐ गाफिल न समझा था मिला था तन रतन तुझको, मनुष्य जन्म रत्न जन्म मिला था। मेरा तेरा करके पिस डाला अपने को, घिस दिया बर्बाद कर दिया। मेरे लड़के की शादी जरा वट से हो, मेरे लड़के की शादी में दिखावा करो, चाहे फिर बेईमानी करनी पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे झूठ करना। लोग बोले महाराज चोरी बेईमानी नहीं करते तो आजकल काम नहीं चलता, मर जाएंगे। अच्छा तो बेईमानी कर करके मर जाओ, उससे तो ईमानदार रह के मरे तो घाटा क्या हुआ। बोले बेईमानी किए बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे। तो बेईमानी करते करते मरना अच्छा है कि ईमानदारी से मर जाना भी अच्छा है। और आज तक ईमानदारी से मरने वाले आदमी को मैंने नहीं देखा, ईमानदारी से जो अडिग रहता है वो अमर हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री मर गए क्या, नहीं अमर हो गए, ईमानदारी थी। और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे थे, चाहे तो कितना परदेश में थप्पा लगा देते, नहीं ईमानदारी पकड़े रखे तो जी तो सके। खाते थे कोई, भूखे रहते थे क्या। और उनका लोगों के हृदय में कितना नाम है, कितना यश है। और मिलता वही है जितना आपके प्रारब्ध में है, ऐसा नहीं कि आप बेईमानी करते तो ज्यादा हो जाता है। अभी दिखता है कि होता प्रारब्ध में, अगर बेईमानी से मिलता होगा तो कूड़ कपट बेईमानी जो आए वो सब करने वाले आवारा गर्दी के लोग तैयार हैं, फिर भी उनको रहने का घर नहीं है, फुटपाथ पे पड़े हैं। बेईमानी से अगर आदमी सुखी हो जाता तो बेईमान लोग सब सुखी होते। अरे बेईमान लोगों की तो यहां भी वैल्यू नहीं होती और वहां भी कीमत नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईमानदार आदमी तो ईमानदार को प्यार करता है, लेकिन बेईमान आदमी भी ईमानदार नौकर चाहता है, ईमानदार मुनीम चाहता है, ईमानदार दोस्त चाहता है। बेईमान आदमी भी अपना नौकर, अपनी नर्स, अपना डॉक्टर, अपना मुनीम ईमानदार चाहते हैं। कूड़ कपट धोखाधड़ी करने वाले लोग भी चाहते कि मेरा नौकर धोखा न करे, धोखा करेगा तो माल ले जाएगा क्या, मुनीम धोखा न करे। तो ईमानदार को चाहता ही है, लेकिन बेईमान आदमी भी ईमानदार को चाहता है। जब बेईमान भी ईमानदार को चाहते, ईमानदार भी ईमानदार को चाहते, तो क्या भगवान ईमानदार को प्यार नहीं करते क्या? और जिसको भगवान प्यार करे उसको खोट किस बात की रहती है, टोटा किस बात का रहता है? हम लोग जीवन जीने का ढंग भूल गए, कौरवों के सभा में मिल गए, कौरवों की लाइन में चले गए, इसीलिए परेशानी होती। तुम पांडवों की लाइन में रहो, फिर अक्षय पात्र होगा, एक जरा सा पात्र भी कईयों को तृप्त कर देगा, तुम्हारा जरा सा हृदय भी कईयों के दुख दूर कर देगा, ऐसी तुम्हारे में शक्ति। ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम। पाप क्यों होते हैं, बढ़ते क्यों हैं, पापों का अंत क्यों नहीं होता? कि मैं और मेरा, या मैं हूं और ये मेरा है, और बढ़े और ये करूं, ये दिखाऊं, ये करूं, ये करूं, मैं क्या हूं वो पता नहीं है, दुनिया में कुछ करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, मकान पे मकान लगा के दिखाऊं, खेत बड़ा करके दिखाऊं, गाड़ियों पे गाड़ियां ला के दिखाऊं। अरे पड़ा रहेगा माल खजाना, बेईमानी करके कितना भी तू ऊंचा चला जा, शांति नहीं मिलेगी। जिससे दिखाया जाता है उस ठाकुर जी को बोलते कि मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु तेरा है, जो कुछ है सो तेरा। सासू की सेवा करो, लेकिन सासू मेरे को गहने दे दे वो लालच से सेवा मत करो। सासू में मेरे ठाकुर जी हैं, ससुरा की सेवा करो, अड़ोस पड़ोस के मोहताज लोग हैं, बुढ़े बुढ़िया, उनकी सेवा करो, उनके दिल की आशीर्वाद आपका बड़ा धन होगा। दीन दुखियों की सेवा करो, लेकिन बड़ा कहलाने के लिए दिखाओ नहीं। जैसे नेता लोग पूड़ी के पैकेट बांटते, 5-25 पैकेट बांटेंगे, फोटो निकलवाएंगे, अखबार में छपा फलाना नेता ने दुष्काल राहत यज्ञ कर दिया, गया खाक कर दिया, सत्यानाश कर दिया, उघराया तो 3 लाख रुपया और खर्चा किया 23,000 रुपया, बाकी के सब हड़प हो गया और अखबार में फोटो छप गया। अब नेता को शांति कहां से मिले बेचारे को? श्री राम, क्यों राम नहीं बोलते बाबा? बोलो श्री राम। सब नेता ऐसा नहीं होते हैं, जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जय राम जी, नारायण 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 नारायण। नेताओं का कसूर नहीं है, वो लोग स्कूली विद्या में पढ़े हैं, गुरुकुल में नहीं पढ़े हैं, गुरु के चरणों में नहीं पढ़े। स्कूल की विद्या हम 3 पढ़े और गुरुकुल में पढ़े हैं, तो आप तुम्हारे सामने बैठे, क्या घाटा है, क्या टोटा है? हकीकत में बेईमानी से तो आदमी की शक्ति, पुण्य और योग्यता नाश हो जाती है। और बेईमानी तब होती है कि देह में अहम होता है, संसार को सच्चा मानते तभी बेईमानी होती है। परमात्मा मेरे और मैं परमात्मा का हूं ये पक्का हो जाए तो बेईमानी घट हो जाएगी, कम हो जाएगी। संसार सपने जैसा, इस बात को पक्का करो, बेईमानी कम होती जाएगी और आपके दुख दूर हो जाएंगे। आपको जो चाहिए वो पहले आ जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि इसकी आवश्यकता है, इसका उपयोग करो। बच्चा माता के गोद में आता है, बच्चे का जन्म होता है, उसके पहले माँ के दूध में, माँ के शरीर में दूध होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही आपको जिस वक्त जो चाहिए उस चीज की अपने आप वातावरण बन जाएगा। आप दूसरों के काम आते हैं, जो वस्तु किसी के काम आती है वो क्या रास्ते पे पड़ी रहती क्या? अरे जूठा कागज भी अगर काम आता है तो उठ जाता है। तो आप ईश्वर के नाते काम करेंगे तो समाज के काम आएंगे, संतों के काम आएंगे, लोगों के काम आएंगे, अरे लोकेश्वर के काम आएंगे। जो लोकेश्वर के काम का आदमी है, क्या लोकेश्वर उसको भूखा रखेगा क्या? समाज उसको भूखा रखेगा क्या? स्वामी विवेकानंद यात्रा कर रहे थे और उस डिब्बे में कोई लाला बाबू बैठा था, लाला सेठ। वो देखता साधु बाबा है, भगवान का जामा पैर के बैठे हैं, कोई काम धंधा करते नहीं, अब भगवान कोई खिलाएगा? हम देखो रबड़ी पूड़ी खा रहे, फिर कभी पकोड़े निकाल के खाते थे और विवेकानंद की मजाक करते। राजस्थान की कोई जंक्शन स्टेशन, बीकानेर की तरफ जाने वाली गाड़ी में बैठे थे और कोई जंक्शन पर गाड़ी खड़ी रही जहां गाड़ी बदलनी थी। महाराज धूप के दिन थे, गर्मी के दिन थे, सुराई उसके साथ में थी, ठंडा पानी पीते थे और विवेकानंद उतर के नल से पीते थे। वो बोलते हैं कि देखो साधु बाबा बने तो गर्म पानी पीना पड़ा है क्या? हम देखो सुराई में ठंडा पानी पी, और देखो कल रोटी बना के निकले साथ में तो खा रहे हैं, और तुम? विवेकानंद शांत रहे। जहां गाड़ी बदलने के लिए ठहरना था स्टेशन पर, झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, वो सेठ लाला मोटा जो धन का ही गुलाम था उसने अपना दरी बिछाई, विवेकानंद भी उसी छाया में बैठे। उसने फिर टिफिन खोले, इतने में एक आया हलवाई भागता भागता, बगल में चटाई थी, एक हाथ में सुराई थी ठंडे पानी की और झाड़ू था दूसरा। झाड़ू मारा, चटाई बिछाई, सुराई रखी, हाथ जोड़कर बोलता कि स्वामी जी आप जल पान करिए, भोजन बना रहा था मैं, अब भी दो मिनट में लाया। विवेकानंद बोलते भाई मैं तुझे जानता नहीं, तू मुझे नहीं जानता, ये क्यों भोजन बना कर? बोले बाबा जी मैं हलवाई हूं, स्टेशन बाहर मेरी दुकान है और राम जी मेरे इष्ट है, मैं अभी भोजन करके लेटा था तो मेरे को स्वप्न हुआ कि मेरा प्यारा भूखा है, तू जल्दी उठ और भोजन बना। महाराज मैंने पूरी बनाई है, रबड़ी तैयार है, सब्जी तैयार है, दो सब्जी तैयार है, चटनी तैयार, महाराज अभी आया। वो गर्मा गर्म थाल लेकर आया, वो लाला तो जिसने संभाल के पैसे रखे थे वो तो दो दिन का बासी चबा रहा है और विवेकानंद गर्मा गर्म ताजा खा रहे हैं। आपको लगेगा कि विवेकानंद तो भाई इतने 80 साल पहले की बात है, आशाराम की बात करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, घर में माँ थे, बाप था, कुटुंब था, फिर भी टाइम से इतना टाइम से नहीं मिलता था जितना उस ईश्वर के भरोसे चल पड़े। हमने कई जगह पर रहे और देखा कि यहाँ परिचय तो मिलता है, अनजान जगह में गए, नर्मदा किनारे जहाँ चिड़िया भी परिचित न हो, नर्मदा के जंगल में जाके बैठे रात्रि को और सुबह आसन वासन किए, फिर मन को देखा कि अब देखे कौन खिलावे, जब वही आएगा तब खाएंगे। देखा महाराज सूर्योदय हो रहा है, अभी तो आसन चालू है, आसन करने के बाद आधा घंटे के बाद चाहिए दूध या फल या कुछ, आसन चालू है और दो आदमी आए। बिल्कुल मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, व्यासपीठ पर झूठ बोलने से तपस्या क्षीण होती है। दो आदमी आए, साफा बांधा था और बोले महाराज ले लो ये दूध और फल। मैं क्या भाई आप किसके लिए लाए, मैं तो आपको नहीं जानता। बोले आप मेरे को नहीं, हमको नहीं जानते, लेकिन महाराज हम भी आपको नहीं जानते हैं, लेकिन जो आपको और हमको जानता है ना उसने भेजा है। मैं क्या कैसे, आपका कोई परिचित साधु वादु होगा? बोले महाराज इधर कोई साधु नहीं, हमारा 3 माइल दूर गाँव है, रात को 3 बजे हमको स्वप्न आया था और कल गाँव में आया था फेरी करने वाला, अनाज के बदले केले दे गया था, छोटा सा गांव है हमारा, ये केले लाए हैं और दूध लाए, महाराज ये आप आरोगो फिर हम ढोलक लाएंगे और सामैया करके वाजते गाजते अपने गांव में ले जाएंगे और वहां आपके लिए रहने का और खाने का बंदोबस्त करेंगे। मैंने कहा रे प्रभु जिस माँ ने कुक से जन्म दिया, जिस भाई और कुटुंब ने संभाला, वो भी इतनी खबर नहीं लेते थे जितनी तू खबर रखता है इस जंगलों में। आप ईश्वर के हो जाए तो ईश्वर को तो आपका बड़ा ख्याल होता है, आप व्यष्टि हैं और ईश्वर समष्टि है। जैसे आप एक आपके एक अंग में कहीं मच्छर काटता है तो क्या हाथ किसी से पूछने जाता है क्या कि मैं यहां जाऊं कि नहीं जाऊं, पहुंच जाता है। पीठ पर मक्खी बैठती और काटती तो हाथ पहुंच जाता है, और ललाट पर आकर मच्छर बैठता है तो अपने आप हाथ पहुंच जाता है कि आपका एक एक अंग सब मिला के आप ही हैं, ऐसे सारा विश्व मिलाकर ईश्वर है, तो ईश्वर की तमाम शक्ति आपके साथ जुड़ी है कि आप जब बेईमान बन जाते हैं ना तब ईश्वर बोलता है इसको कूटने दो। पौराणिक कथा है कि एक भगत राज थे, वो सरजू के किनारे ठाकुर जी की सेवा पूजा में नहा धोकर अपना थोड़ा पूजा कर रहे थे। इतने में धोबी ने कपड़े धोते तो जरा कपड़े छींटे मारे, छींटे मारे तो भगत सहन शक्ति वाला था, उसने कहा भैया मैं देखो ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। धोबी ने गालियां दी, कर रहा है तो क्या है बाबा का बच्चा ये। महाराज थोड़ी देर तो उसने सहा, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराज रहे थे, भगवान विष्णु छलांग मार के उठे। माता जी कहती है लक्ष्मी जी कहां जा रहे, अब बताने का समय नहीं, अरे मेरे भक्त की रक्षा करना है। भगवान एकदम छलांग मार के गए, आधे में से फिर वापस आ गए। लक्ष्मी जी पूछती है कि क्यों गए तो बड़े तेजी से और मृत्यु लोक में तो पहुंचे नहीं, आधे से कैसे वापस आए? बोले पहले मेरा भगत सब ठाकुर जी का करके तन्मय हो रहा था, एक दो अपमान जनक वचन सुने और सोचता था कि मेरे को क्या कह रहा है, मैं तो ठाकुर जी का हूं, जो कुछ हो रहा है ठाकुर जी का। फिर तीसरी चौथी गाली दी तब मेरे भगत ने भी डंडा उठाया, अब दोनों धोबी है तो मेरे को बीच में जाने की जरूरत क्या है, दोनों धोबी हो गए क्या? हमारा भरोसा जब हमारा यकीन कमजोर होता है तो ईश्वर की शक्तियां हम फायदा नहीं ले सकते, हमारा यकीन मजबूत होना चाहिए कि ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, हमारा नहीं है। बेटा है तो ईश्वर का है, बेटी है तो ईश्वर का है, इज्जत है तो ईश्वर की है, बेइज्जती है तो ईश्वर की है, भोजन कर रहे तो ईश्वर का शरीर है उसको खिला रहे हो, अपने को मत खिलाओ, पानी पिला रहे तो ठाकुर जी के शरीर को पिलाओ, शयन करा रहे तो ठाकुर जी के शरीर को नींद कराओ, अरे कपड़े बना के पहरा रहे हो तो बेटे को मत पहराओ, ठाकुर जी के बेटे को पहराओ, आपको पुण्य हो जाएगा, आप तो ठाकुर जी के सेवक हो गए। कितना सरल उपाय है, कितना सीधा उपाय है, बैलों को हांको लेकिन अपने बैल समझ के नहीं, ठाकुर जी के बैल हैं तो उनको टाइम से खुराक भी दे दो, पानी भी दे दो, क्योंकि ठाकुर जी का माल है के जयराम जी के बैलों से काम भी लेना है और उनकी सेवा भी करना है। भैंस को दो लेकिन अपनी समझ के नहीं, नीचो मत डालो, ठाकुर जी की है और छोड़ो भी मत, एकदम बुद्धू बन के, ठाकुर जी की भैंस है, अपनी भैंस करोगे तो मां बोलेंगे तो खुश होंगे, दूसरे की भैंस कोई दे डंडा और अपनी भैंस है तो कोई नहीं, ना 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 ना, ठाकुर जी का है, भगवान का है, भगवान का संपुट लगा दो, सचमुच में है भगवान का। और हम बेईमानी करते हैं, मेरा है, जितनी बेईमानी मजबूत उतना आदमी अशांत रहता है, उतना दुखी रहता है, और जितनी बेईमानी कम उतना दुख कम, और बेईमानी नहीं तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, चिंता रहेगी काहे की, अमेरिका में क्या हो रहा है आपको चिंता है क्या, कईयों के घर में क्या हो रहा है आपको चिंता है क्या, क्योंकि आपके नहीं है, जैसे और घर आपके नहीं है, करोड़ों करोड़ों घर आपके नहीं, तो ऐसे एक घर आपका नहीं है कर दो और क्या है, जब करोड़ों करोड़ों नहीं करके बैठे तो एक को और लगा दो, नहीं मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं नहीं आप काम सुचारू रूप से करो लेकिन ममता को काट दो। आप जा रहे हैं और कोई मजाक कर रहा है तो हम चिढ़ जाएंगे कि मेरा अपमान हो रहा है, तुम्हारा काहे का अपमान हो रहा है, शरीर ठाकुर जी का, क्यों ठाकुर जी शरीर का अपमान हो रहा है, ठाकुर जी के शरीर का अपमान हो रहा है, आप मौज में रहेंगे तो मजाक करने वाला चाहता था आपको दुखी करना, और आप दुखी नहीं हुए तो आपकी जीत हुई कि हार हुई, मजाक करने वाले ने, छेड़खानी करने वाले ने आपसे मजाक किया दुख पैदा करने के लिए, और आपने सोचा कि मेरा इंसल्ट हो रहा है और आप दुखी हो गए, तो दुखी हो गए तो बात तो उसकी बन गई, क्या वो सफल हो गया, इसमें तो शत्रु भी असफल हो जाएंगे, आपको सताने वाले भी असफल हो जाएंगे, आपकी मजाक उड़ा रहे हैं तो आप समझो कि मजाक मेरी कैसे, शरीर ही मेरा नहीं तो मजाक मेरी कैसे, ठाकुर जी की है, जो कुछ है ठाकुर जी का है, मजाक उड़ाने वाले में भी ठाकुर जी है, मजाक उड़ रही है उसमें भी ठाकुर जी, वाह मौज ही मौज, आप तो मौज में हो जाएंगे, मजा ले कि वो ज्यादा समय तुम्हारे से दुश्मनी कर सके, उसका स्वभाव बदल जाएगा, स्वभाव नहीं बदलेगा तो कुदरत उसको चोटे मार के भी बदल देगी, जरा जरा बात में उद्विग्न हो जाते, आवेश में आ जाते, अथवा तो व्यवहार में दूसरी थोड़ी छूट छाट लो, अपने वालों से न्याय करो और दूसरे हैं उनसे उदारता से बरतो। हम क्या करते, अपने वालों से पक्षपात करते हैं, उदारता रखते हैं और दूसरे से कंजूसी करते हैं। नहीं, अपने वालों से न्याय। दो भाई थे, बड़ा भाई ले आया बाजार से आम, हापुस आम, नए नए निकले थे, थैली में ले आया पांच सात, दोनों भाइयों के बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा बड़े भाई का खेल रहा था, छोटे भाई का, आ जाओ आम देता हूं, दो आम निकाले, एक हाथ में बड़ा आम था, दूसरे में जरा छोटा था, तो अपना बेटा छोटे आम के हाथ पर आ गया और भाई का बेटा बड़े आम की जगह पे आ गया, उसने क्या करा, देखो मैं जादू दिखता हूं, एक दो तीन हाथ बदल दिया, अपने बेटे की तरफ बड़ा आम आ गया और भाई के बेटे की तरफ छोटा आम आ गया, ऊपर भाई देख रहा था खिड़की से, वो नीचे उतरा, बोले भाई साहब अब अपन साथ में नहीं रह सकते, अलग करो काम। जयराम जी की ये बेईमानी हुई क्या, ममता है ना मेरा बेटा, ये बेईमानी, बेईमानी ने मुसीबत पैदा कर दी, नहीं भाई का बेटा है तो उसको सवाया दो और अपना बेटा है तो उसको पूरा दो, भाई का बेटा है तो उसको रुपया दो, तो अपने बेटे को बारह ना दोगे तो चलेगा, अपने वाला है, हम लोग ममता करते इसलिए घर में झगड़ा होता है, देवरानी का बेटा है उसको थोड़ा दिया और अपना बेटा तो उसको यूं दे दिया, फिर घर में तो है बात हम बात, आखला आखली होगा क्या, और काहे होगा, झगड़ा क्यों होता है, बेईमानी से झगड़ा होता है, सच्ची बात यह है, अपनी बहू जो अपनी पत्नी बोले वो सब सच्चा, और भाई की पत्नी जो बोले वो रांड ऐसी है, होता है झगड़ा, दो भाई लड़ मरे आपस में बेईमानी से तो लड़ मरे और क्या करें, दुल्हन शादी करके आई, दो चार दिन रही, फिर नणंदों ने कहा कि हमारा भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, दुल्हन ने कहा कि तुम तो चार दिन रह के चले जाओगी, हमारे को तो सारी जिंदगी बिताना उनसे, हम उनसे बिगाड़ूंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, दुल्हन ने नणंदों की बात नहीं मानी, कम से कम इतनी अकल तो अपने को होनी चाहिए कि विश्व नेता परमात्मा से तो जिंदगी गुजारना है, मरने के बाद भी उसके साथ रहना है। ये नणंद, शरीर रूपी नणंद, व्यवहार रूपी नणंद तो चार दिन का है क्या? इनकी बातों में आकर उस पति से क्यों बिगाड़ो, अपनी इज्जत काहे खराब करो? अगले जन्म में भी वो पति था तुम्हारा, इस जन्म में भी वही अंतर्यामी प्रभु तुम्हारा पति, और शरीर छूट जाएगा तो भी वही दुल्हा से निभाना है तुमको। तुमको तो सदा उसके साथ रहना है। चार दिन की ये संसार की नणंदों के चक्कर में काहे आओ? जयराम जी बोल दियो। ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम, पापों का अंत हो जाएगा फटाफट एकदम, कल से ही आप ये काम करो। तुलसी के दल तो होंगे आपके पास, तुलसी का दल रख दो तिजोरी पे, मेरा माल नहीं है, मेरा धन नहीं, ठाकुर जी का धन है, उसकी सुरक्षा करो, संभालो, उसका सदुपयोग करो, लेकिन मेरा मेरा करके मरेंगे तो फिर वो मुसीबत हो जाएगी। आप धन की तिजोरी की पद्धति जानते हो? आप जब यूं करते हैं, तिजोरी को यूं करते हैं तो खुलती, और यूं करते हो तो बंद हो जाती। तो आप देने के भाव से आते तो खुलती है, और संभालने के भाव से आते तो बंद हो जाती। होता है कि नहीं? चाहे कहीं भी रखो, यूं करना पड़ेगा। इधर रखो तो भी यूं करना पड़ेगा, इधर रखो तो भी यूं करना पड़ेगा। तो जब देने का विचार आता है तो यूं होती, और जब रखने का विचार आता है तो यूं होती। होती कि नहीं होती, सच बता दे। ऐसे ही आप परहित के लिए जब विचार करते हैं तो आपका हृदय खिल जाता है, खुश हो जाता है, और जब आप सुख लेने का भाव करते तो हृदय तुम्हारा दब जाता है, बंद हो जाता है। मान लेने का भाव होता है तो आपका हृदय सुकड़ता है, और मान देने का भाव होता है तो आपका हृदय पुलकित होता है। बिल्कुल सच्ची बात है, आजमाई हुई है। सुख लेने का भाव है तो आपका हृदय सुकड़ता है, और सुख देने का भाव है तो आपका हृदय खुलता है। ठाकुर जी के सब हैं संतान, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी घर का हो, किसी ठाकुर जी के है। ये शरीर ठाकुर जी का है, घर ठाकुर जी का, तो शरीर को खिलाओ, घुमाओ, फिराओ, लेकिन औषधवत मौज लेने के लिए दे ठोस, फिर बोले आ आ डकार खाया करे, के काय करे पेट में, के भूतड़ा दौड़े, भूतड़ा कोई नहीं दौड़े, तारी बेवकूफी दौड़े यार अंधाता। नारायण 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 नारायण। बाकी तो संसार का काम पूरा करके फिर भजन करूंगा, संसार का काम पूरा करके फिर सुखी हो जाऊंगा, ये नहीं होगा। रिटायरमेंट होगा तब सुखी हो जाऊंगा, लाड़ी आ जाएगी छोरा की फिर सुखी हो जाऊंगी, वो लाड़ी पग दबाएगी, पानी मांगोगी तो दूध का वाटका लाएगी, दूध मांगोगी तो सोना के वाटके में लाएगी। ऐसे सपना देखो मती, नहीं तो वो तो लाडा को लेके भाग जाएगी, क्या दूसरा करेगी घर, दूसरा मकान बना लेगी, और तू देखती रहेगी। अभी ठाकुर जी का छोरा ऐसा समझ के उसका पालन पोषण कर, तो छोरा तो सेवा करेगा और छोरा की लाडी भी सेवा करेगी, नहीं तो पड़ोस की लाडी भी अपने आप सेवा करेगी।